نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رهبر کامل کے سلسلے میں آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب کی حیثیت میں اس باب کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ کیا ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت. اور امید ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل رہبر مانتے ہیں وہ اس سے فائدہ لیتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 78، پیج نمبر 78، اولاد کی تعلیم و تربیت. اگرچہ اصول تو یہی ہے کہ جسے جتنی اپنی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے اسے اتنا ہی اس کی تعلیم و تربیت کا زیادہ خیال ہونا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ یعنی اس زمانے میں جسے اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے اتنی ہی اس کی اولاد نالائق اور جاہل رہتی ہے، کیونکہ حد سے زیادہ پیار اور لگاؤ کی وجہ سے اس کی تعلیم کا اتنا خیال نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اولاد کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ پیدائش سے ہی اولاد کی اصلاح کے در پہ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسے وہ تعلیم دیتے ہیں کہ بچہ سنِ شعور کو پہنچتے ہی بڑوں کی طرح دانا ہو جاتا ہے، اور جو بات کرتا ہے ایسی جچی تلی کرتا ہے کہ بڑے بڑے مدبر بھی حیران رہ جاتے ہیں. اس میں کوئی کلام نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس زمانے کی طرح اسکول اور مدرسے نہ تھے اور نہ ہی کتابیں ہوا کرتی تھی کہ بچوں کو پڑھا دی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باتوں ہی باتوں میں توحید و سنت اور عقل و دانش کی، جسے آج منطق، فلسفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاریخ و سیر کی. سیر کہتے ہیں سیرت کو، یعنی پچھلے لوگوں کی کہانیاں بتانا، اخلاق اور معیشت کی، اور نامعلوم کن کن علوم و فنون کی تعلیم فرما دیا کرتے تھے. جب بچہ پیدا ہوتا تو مان یعنی فوراً اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہلائی جاتی، اور یہی پہلا توحید و سنت کا سبق ہوتا جو بچے کے دماغ پر منقش کر دیا جاتا یعنی نقش کر دیا جاتا. اس کے بعد اس کے سامنے ایسی باتیں کی جاتی جس کا اثر اس کے دل پر ہوتا، ممنوعات سے بتشدد اسے روکا جاتا، یعنی وہ چیزیں جو منع ہیں اس پہ اگر بچہ نہ رکتا تو اس کو زبردستی روکا جاتا. امور حسنہ کے متعلق اسے تحریص و ترغیب دلائی جاتی. تحریص حرص سے ہے، حرص جیسے ہم اپنے لفظوں میں بولتے ہیں، اور ترغیب رغبت سے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ بچے ابتدائی عمر ہی میں ذہین، سمجھدار اور کسی حد تک عالم و فاضل ہو جاتے. تو یہ تھی تمہید اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی اور کیسے ہوئی. میں محسوس کرتی ہوں کہ بچوں کی تربیت ہر دور میں ایک مسئلہ رہا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں بہت کچھ جاننے والے بھی مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور اس بارے میں ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے اور سنتے ہیں. کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک باپ کے روپ میں دیکھتے ہیں، تو کہیں ہم آج کے دور کے ماں باپ کے عمل دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعی ایک راہبر کامل بنا کے بھیجا، انہوں نے جس طرح سے تربیت کی ہوگی وہ بے مثل ہے. تو لہٰذا ان تمام باتوں کو سنتے وقت کبھی دل میں یہ خیال مت لائیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پرانے دور میں تربیت کی، آج کے دور میں مشکل ہے، آج حالات فرق ہے. کبھی ایسا نہ سوچیے، کیونکہ جس دل میں شک آ جاتا ہے نا پھر قبولیت نکل جاتی ہے. یاد رکھیے، شک اور قبولیت ساتھ ساتھ نہیں رہتے. لکھ لیں یہ جملہ، جس معاملے میں آپ کو شک آ جائے گا قبولیت کا گراف خود بخود نیچے گرنے لگے گا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ جب ہم शक से पाक दिल लेके उनके मामले को सुनेंगे और समझेंगे। क्योंकि जब हम किसी को बहुत एक दूसरी इंतहा पे रखते हैं तो फिर हम उससे फायदा नहीं ले पाते। मसलन मैंने देखा है कि आज के दौर में लोग दीनदारों को दीन के नाम पे तो पसंद करते हैं, लेकिन दुनियावी मामलात में, घरेलू मामलात में, बच्चों के साथ उनका मामला, उसको कोई इतना पसंद नहीं करता। और लोग अमूमन ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के जो लाड देखते हैं और जो उनके चाव करते हैं, यही शायद उनके यानी साथ अच्छी तरबियत की बात है। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम हर फन के माहिर थे। अल्लाह ताला ने उम्मी होने के बावजूद उनको उलूम के खजाने दिए थे। तो अब कुछ अमली मिसालें देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों की तरबियत करते थे। सबसे पहला जो वाक्या है वो हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा की तरबियत का है। एक दफ़ा सैयदना हसन रदी अल्लाहु अन्हो और हुसैन रदी अल्लाहु अन्हो में बाहमी चपकलश हो गई। चपकलश कहते हैं घुत्तम घुत्ता, छोटे बच्चे लड़ने लगते हैं, बैठे एकदम छीना छपटी होने लगती है, एक दूसरे से चीज़ें लेने और देने लगते हैं। तो इस तरह की कोई बात हो गई। दोनों अभी कम सिन थे यानी छोटी उम्र के थे। लड़ते लड़ते अम्मा जान के पास आ गए। अम्मा जान कौन थी? फातिमा तो जहरा, अल्लाह के नबी सल्लम की प्यारी बेटी और जन्नत की औरतों की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार थी। उनको उनके पास गए। एक कहता है मुझे इसने मारा है, दूसरा कहता है मुझे इसने मारा है। अब ये बच्चों की अमूमन आदत होती है, खेलते भी साथ हैं और लड़ते भी साथ ही हैं, और फौरन इसी तरह एक दूसरे को कहते हैं शिकायत लगाने के अंदाज में। आपने इनके भोलपन की तरफ देखा तो फरमाया, मुझे क्या मालूम कि पहले किसने मारा, मैं तो कहती हूँ तुम दोनों मुजरिम हो, क्योंकि तुम दोनों ने कानूने इलाही की खिलाफ वर्जी की है। हुक्म था ला तुफसिदु फिल अर्द, जमीन पर दंगा फसाद न करो, मगर तुम लड़ते झगड़ते हो, दोनों मुजरिम हो, माफी मांगो। चुनाचे वो इसी वक्त अपना झगड़ा तो भूल ही गए और बारगाहे इलाही से माजरत ख्वाह हुए। मुअर्रखीन ने लिखा है कि इसके बाद इनमें कभी लड़ाई नहीं हुई। आज की माओ के लिए एक खूबसूरत नुक्ता है। कितनी माएँ हैं जो बच्चों को कुरान की आयतें सुना के तरबियत करती हैं। माँ को भी नहीं आती होगी, मजबूरी तो ये जो चीज़ आती है वो ज़ुबान पे होती है, हमें ज़ुबानी आयतें नहीं आती। तो क्या ज़रूरत नहीं कि इस छोटी सी आयत को याद कर लें, लिखें अपने लिए अमल की बात। ये छोटी सी आयत याद कीजिए और जब आपके बच्चे आपस में झगड़ें तो ये आयत उनको पढ़ें, और साथ फिर उनको समझाएं भी, तर्जमा भी बताएं। आप देखिए हमारी 10 बातें और उससे भी ज़्यादा रब की एक लफ्ज़, रब का एक लफ्ज़ वो अहमियत रखता है, वो असर रखता है लोगों के दिलों के ऊपर, वो उसका असर होता है जो हमारी लाख हजारों बातों का नहीं होता। तो अब देखिए माँ ने कितने प्यारे से बात की। अच्छा, अमूमन ज़रा सोचते हैं कि आज के दौर में अगर ऐसा मामला हो तो माएँ कैसे करती हैं। कोई आप में से बताना चाहेगा कि जब ऐसा मामला, और मेरा ख्याल ऐसा मामला हर घर में होता है, छोटे बच्चे भी हों और आप एक घर के बच्चे हों, या जहाँ 4 बच्चे मिल जाते हैं फिर वहाँ होता है। तो ज़रा सपोज़ कीजिए कि आपके पास 2 बच्चे लड़ते हुए आए और एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं। हकीकत पसंदी से बताइए कि माएँ अमूमन उस वक़्त क्या करती हैं। इन्होंने कहा कि जो बड़ा होता है तो हम उसको समझाने लगते हैं कि देखो तुम बड़े हो, तुम इसके साथ ऐसा ना करो। इनके समझाने का अंदाज क्या है कि ये कहती हैं कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़े, तुमने मम्मी को आके क्यों नहीं बताया, लड़ने से पहले ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, अमरीन कहती हैं कि ये और गुस्सा करने लगती हैं कि तुम लोगों को लड़ने का और काम नहीं इसके अलावा, यानी ये भी वही करने लगती हैं जो इनके बच्चे कर रहे होते हैं। तनवीर के पास जो आता है ये दोनों को पनिश देने लगती हैं। मैंने अपना अमल आपके सामने रखना चाहूंगी। यानी मैं जब जहरा की शादी से पहले घर में थी तो भाई हैं तो दोनों के बच्चे हैं, माशाल्लाह दोनों सब एक ही उम्र के हैं, दोनों के साथ साथ ही होते हैं। तब क्या होता है कि 2 बच्चे झगड़े हुए आते हैं, पुप्पो पुप्पो दे देखें इसने मुझे ये किया, उसने मुझे ये किया। तो मैं क्या करती थी कि मैं उनको खामोशी से सुनती थी उनकी बात। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या? फिर मैं कहती थी देखो इसने तुम्हें से ज्यादा की ना, मुझे फील होता था जिसने की, तो मैं दूसरे को कहती खो तुम इसको माफ़ कर दो, तुम माफ करोगे ना तो तुम बड़े हो जाओगे। जैसे अक्सर कहते हैं ना कि माएं कहती हैं बेटा दूध पी लो तो तुम बड़े हो जाओगे,
खुश होते हैं।
तो मैं हाँ इस बात से बच्चे बड़े खुश होते हैं ना कि कोई उनको ये कहे कि तुम बड़े हो जाओगे, क्योंकि उनका बेचारों का एक ही टारगेट होता है कि हमने बड़े होना है, क्योंकि बड़े जो उनके सामने काम कर रहे होते हैं वो उनको लगता है कि हम क्यों नहीं करते, जुल्म होता है। तो बाहर अभी भी हम आ रहे थे तो मेरी हमारी नंद है तो उनका बच्चा होता है साथ घर में ना, तो वो हमें रोज आते हुए देखता है, तो बच्चों का तो दिल होता है ना कि हमें मुझे भी बाहर ले जाए। तो मैंने आज कहा अपने नंद को, मैंने कहा देखे ये रोज देखता है कि ये मेरे पे जुल्म करते हैं, मुझे नहीं लेके जाते और खुद चलते हैं, तो बड़े होके फिर इसीलिए ये बच्चे हमें भी नहीं लेके जाते कहीं और ज्यादती करते हैं। तो बहरहाल मैं उनमें से एक को क्या कहती थी, देखो आपको पता है जो दूसरे को माफ कर देना वो बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा मैं इस तरह बात करती थी ना तो फिर वो दूसरा वो एकदम दूसरे को बहुत बड़े रो कहता जो मैंने तुम्हें माफ किया तो वाकई उससे माफी का सबक भी मिल जाता है और बच्चे जो हैं वो फिर आपस में मोहब्बत भी होती है और वो दोनों हंसते रहते हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि इस मौके पे आपको एक हदीस सुनाऊं, आप सबके लिए भी फायदेमंद होगी और मेरे लिए भी, और जिस नबी की जिंदगी की बातें पढ़े उन्हीं का फरमान है। अपने लफ्जों में सुनाऊंगी कि कल कयामत के दिन दो लोग आएंगे और एक जालिम होगा एक मजलूम, यानी एक ने ज्यादती की होगी दूसरे ने सही होगी, तो उस वक्त जो जिस पे ज्यादती हुई थी वो इस बात का यानी बजिद होगा कि मैं इसे अपना बदला लूं, क्योंकि उस दिन तो सब लोग अपनी नेकियां लेने के लिए होंगे कि हमें किसी तरह मिले, ऐसे नहीं तो वैसे मिल जाए, तो दोनों झगड़ रहे होंगे, जो मजलूम है वो अपना हक लेना चाहेगा और जालिम के पास कुछ होगा नहीं देने को। तो ऐसे दोनों लोगों को अल्लाह ताला अपने पास बुलाएंगे और दूर से जन्नत का एक महल दिखाएंगे, बीच में होगा वो महल, तो उनसे पूछेंगे क्या तुम ये महल लेना चाहते हो, तो जो मजलूम कहेगा जी अल्लाह ताला मैं लेना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं इससे अपना हक ले रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नेकियाँ आ जाएं और मैं उस नेकी को पा के मैं जन्नत के आला दर्जे लूँ। तो जालम कहेगा अल्लाह ताला मैं भी लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास नेकियाँ मतलब ये ले रहा है या जो भी बहरहाल बात होगी, तो अल्लाह ताला उनको कहेंगे अच्छा मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊँ क्या कि तुम इसको माफ़ कर दो, तुम इसको माफ़ करोगे तो इस माफ़ी के बदले में तुम उस महल को ले लोगे, और ये बंदा भी जहर है किसको भी वो मिल जाएगा, जो ही ये बात सुनेगा मजलूम तो कहेगा अच्छा मुझे वो मिल जाएगा जो मैंने तुम्हें माफ किया। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोनों हाथों में हाथ डाले हुए उस महल की तरफ जा रहे होंगे, और सहाबी कहते हैं जिन्होंने ये हदीस रिवायत की कि ये बात कहते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके से दांत, आप इतना ज्यादा मुस्कुराए कि आपके दांत दिखने लगे, यानी ये दर्स अगर माएँ आज बच्चों को दें तो आप देखिए कि ये हो सकता है झगड़े ये लड़े, बच्चों की तो लड़ाई में खैर आ जाए अगर हम माओं को तरबियत करने का बेहतरीन तरीका आता हो। हर घर में लड़ाई होती है हर झगड़ा होता है, लेकिन ये है कि वो माँ ही होती है जो बच्चों के रुख मोड़ देती है अपनी खूबसूरत तरबियत के अंदाज से। एक और वाक्या देखते हैं आपकी ज़िंदगी का, शाइस्ता औलाद। एक दफ़ा हज़रत हुसैन रदी अल्लाहु अन्हो नबी सल्लम के पास बैठे हुए थे कि बैतुल माल के लिए सदके की खजूरें आईं। इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हो उठे और भोलेपन में एक खजूर पकड़कर मुंह में डाल ली। आप सल्लम की निगाह पड़ी तो फौरन उठे बच्चे के मुंह में उंगली डाली और फरमाया कह कह क्या तुम्हें खबर नहीं कि हमारा खानदान सदका नहीं खाया करता। ये कह कह ऐसे ही जैसे हम कहते हैं ना ओए, यानी अपनी अपनी जुबान के कुछ लफ्ज होते हैं तो इसी तरह के लफ्ज आपने बोले। तो उसके बाद क्या हुआ कि नबी सल्लम ने बच्चे यानी बच्चे ने खजूर उगल दी, बस वो दिन था कि बच्चे ने फिर कभी कोई चीज़ भोलेपन से भी हाथ में नहीं ली। जब नबी सल्लम या वालदैन कुछ देते तो खा लेते वरना आँख उठाकर भी किसी चीज़ की तरफ नहीं देखते। कितना प्यारा नुक्ता है, हमारे यहाँ अमूमन छोटे बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे माजरत के साथ जानवर के बच्चे, जो चाहे खा ले बच्चा है, जो चाहे बोल दे बच्चा है, जो भी करे लोग उसको बच्चा बच्चा कह के इस तरीके से गलत कामों का आदि कर देते हैं कि फिर बड़ा होके वो उस काम को छोड़ना ही नहीं चाहता। याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की बेहतरीन तरबियत हो तो बचपन एक ऐसा वक्त होता है कि जो आपके बच्चों को यानी उनकी बुनियादों को पुख्ता कर देते हैं, और उसके बाद फिर आप सारी ज़िंदगी भी कोशिश करें तो आप लोगों उनकी वो तरबियत नहीं कर सकते जो कि आप पहले दिन से कर सकते हैं। तो लिहाजा माओं को हमेशा इस चीज़ का हरीस रहना चाहिए कि अपने बच्चों की बचपन ही में तरबियत अच्छी करें। और आप देखिए कि यहाँ जो बात थी कि उसने गलत चीज़ खाई, बच्चों की आदत होती है, कहीं से बच्चे ने कैंडी पकड़ी उठा के खा ली, किसी के हाथ से छीन ली, कभी भी मोहलत ना दें, इवन छोटा बच्चा। बाज दफा आप देखिए कि छोटे बच्चे होते हैं किसी दूसरे बच्चे का फीडर उठा के पीने लगते हैं, किसी दूसरे की चूसनी लेने लगते हैं, तो प्यार से, इशारे से, एक्शन से उस मासूम बच्चे को सिखा दीजिए कि ये दुरुस्त तरीका नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कैंडीज के लिए तो बच्चे बहुत ही ज्यादा बेचैन होते हैं, तो उस वक्त भी कभी मत ऐसा करें कि वो दूसरे की चीज खा ले। अब देखिए सदके का माल था, खजूर थी, को हराम नहीं, बच्चा मुकल्लफ नहीं। हदीस में आता है कि तीन किस्म के लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलम उठा लिए, यानी उनको उनके गुनाहों का मतलब उस चीज में नहीं पकड़ा जाता, तो उसमें एक बच्चा भी है। यानी अगर वो बच्चा सदके की खजूर खा लेता बिल्कुल उसको गुनाह नहीं था, लेकिन ये आपने उसको रोका। फिर आप देखिए सिर्फ रोका नहीं आपने, यानी उसके मुंह में उंगली डाली और उसको उगलवाया। अब ये एक एक्शन जब एक दफा हो गया तो क्या दोबारा वो ये काम कर सकता है? तो इससे अमल की बात क्या निकली, कभी भी बुरी चीज पे बच्चे को रोकने में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि ये चीज़ यानी बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनको पहले दिन से ही रोक दिया जाए। हमारे यहाँ इसको कहते हैं निप द ईवल इन द बर्ड, शुरू से पकड़ लो। एक दरख्त है, अगर शुरू में उसकी अभी जड़ें कमज़ोर हैं अगर किसी पौधे की, तो उसको उखेड़ना आसान होता है, और मजबूत दरख्तों को काटना और कटवाना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी मैंने देखा है कि जब दरख्त कटते हैं तो उसके लिए कितना माल भी लगता है और कितना वक्त लगता है, फिर वो दरख्त कटता है, फिर भी उस तरह नहीं कटता जैसे बचपन में कटता है। क्योंकि जब आप कच्चे दरख्त को, कच्चे पौधे को छीनते, थोड़े दिन बाद उसकी सतह हमवार हो जाती है, लेकिन जब बहुत पक्का हो जाता है तो कम अज कम नीचे उसका डंठल मौजूद रहता है। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को कभी भी इस चीज़ में रिलैक्स ना महसूस करें कि बच्चे कैसे गलत चीज़ खा लेते हैं। बस आप देखिए कि अब एक तो इसमें ये मिसाल दी कि दूसरे की चीज़ खा ली, इसी तरह गलत चीज़ भी खा सकते हैं। बच्चा मिसाल है ऐसी चीज़ खाते हैं इंग्रेडिएंट अच्छे नहीं, आप बच्चा आप खा रहा था स्नैक्स, आपने देखा अच्छा क्या लिखा हुआ है, आपको लगा कि स्नैक्स अच्छे नहीं है, उसमें कोई चीज़ ऐसी मिक्स है, तो फिर आप फौरी एक्शन लें। ऐसा ना लें कि वो रोने लगे, लेकिन उसको भी अच्छे तरीके से समझाते हुए फिर इस चीज़ पे आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक है मुहज्जब औलाद, बुजुर्गों के अदब आदाब के मुतल्लिक औलाद को ऐसी तालीम दी गई थी कि शायद ही किसी ने दी हो। एक दफ़ा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो खेल रहे थे कि एक बूढ़ा अराबी मस्जिद में आया और वजू करने लगा। गरीब अभी नया नया मुसलमान हुआ था, अभी वजू का तरीका भी सही नहीं आता था। जब बच्चों ने देखा कि कभी पाँव धोता है और कभी मुंह धोने लग जाता है, तो बजाय हंसने और तमस्खुर उड़ाने के इन दोनों ने ये तरीका इख्तियार किया कि इसके पास बैठ गए और एक दूसरे से कहने लगे, लो भाई मैं वजू करने लगा हूँ, अगर कोई गलती करो तो मुझे बताना, अगर कोई गलती करूँ तो मुझे बताना। वजू करने वाले ने अमदन, अमदन कहते हैं इरादतन, वही गलती की जो बूढ़े से हुई थी। दूसरे ने रोका और कहा, यूं नहीं यूं करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह वजू किया करते हैं। बस बूढ़े ने इनसे देखकर अपनी इसलाह कर ली और ये महसूस भी किया कि मुझे बच्चे सिखला रहे हैं, अगर वो जान लेता तो शायद इसे अपनी तौहीन समझता। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि जब हम हजरत हसन और हुसैन की जिंदगी पे गौर करते हैं रजी अल्लाह अन्हुमा, तो हम कितना रश करते हैं ना, इतनी छोटी उम्र में हक पे जान दे दी और किस तरह जमे, तो आपने देखा कि ये किन की तरबियत का नतीजा है। जब माँ ने इतनी अच्छी तरबियत की, बचपन से उनके हाथ रोक लिए, उनको अपनी गलत सही का फर्क बताया, तो फिर आप सोचिए कि ये बड़े होके इतनी समझ कैसे आई। आज जरा इसका मुकाबला करते हैं, चलें तब मुकाबला नहीं, मैंने गलत लफ्ज़ बोल दिया, मवासना करते हैं। आज के बच्चे अगर किसी को कोई गलत काम करता देखे क्या करते हैं अमूमन? मतलब आपने कोई गलती की, आपके बच्चे को पता चल गया, आप लोग शेयर करें मेरे साथ के बच्चे कैसे गलतियों की इसलाह करते हैं या उनका रिएक्शन क्या होता है। जी फातिमा कहती हैं कि यहाँ के बच्चे फौरन टोक देते हैं, जी अमरीन कहती हैं कि बच्चे फौरन रोक देते हैं और हम बल्कि इस पे खुश होते हैं कि देखा इन्होंने कितनी जल्दी हमें मुंह पे टोक दिया, यानी माजरत के साथ बदतमीजी का नाम कॉन्फिडेंस रख दिया हमने आज के दौर में। जी मेमुना कहती हैं कि बच्चे किसी को गलती करता देख के जोर जोर से हंसने लगते हैं, तमस्खर उड़ाने लगते हैं। जी ये बहुत अच्छी बात कह रही हैं सलमा कि बच्चे एक्सेंट का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये तो बहुत आम है क्योंकि माँ बाप जाहिर है अगर बच्चों की खुशी के लिए इंग्लिश बोलते भी हैं और बात सही नहीं निकलती मुँह से तो हंसने लगते हैं, तो आप उनसे ज़रा उर्दू बुलवा लिया करें फिर आपको भी हंसने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो उर्दू बच्चे बोलते हैं वो तो मैं सुनती हूँ उर्दू, जब आप कहीं किसी के घर फ़ोन करें अब तो मुझे मौका ही नहीं मिलता फ़ोन करने का अल्हम्दुलिल्लाह, कभी मैं करती थी तो घर में अगर किसी का बच्चा या बच्ची अगर आप बोले तो अब उनको पता होता है कि ये उर्दू में बात करें तो वो बेचारे इतनी मुश्किल में उर्दू बोल रहे होते हैं ना, और फिर अपनी माँ को जिस तरह से आवाज़ देना यानी अजीबोगरीब सी कहानी है, तो मैं उनकी माँ को यही कहती हूँ कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि पहले मैं इनको उर्दू से ही ठीक करवाऊँ और फिर आपसे बात करूँ, लेकिन ये हकीकत है कि एक्सेंट का मतलब फ़र्क पड़ता है। यास्मीन ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे तो बच्चे हैं, अगर बड़े भी कोई गलती करते हैं तो लोग उनका भी मजाक उड़ाने लगते हैं, और वाकई ये बहुत आम है, शादियों में देखिए, दावतों में देखिए, अमूमन क्या हो रहा होता है एक दूसरे की गलती, यदि मिसाल है आप देखिए कूट रहा है और उसका कपड़ा उलझ गया, या अगर उसने कोई उल्टी चीज़ पहन ली, या अगर एक और बहुत ही बेहुदा किस्म का मजाक उड़ाया जाता था जब लोग हजारबंद पहनते थे कि जब उनका ज़रा हजारबंद लटकता था क्या बुरी बात है, हाँ आपकी चुटिया लटक रही है अगर हजारबंद लटका तो क्या, तो लोग कितने फजूल किस्म के नाम डालते हैं बजाय इसके कि उसको बता दिया जाए, कभी तीन टांगों वाला कहना और कभी कुछ कहना, यानी कितनी एक जहालत है ना, बड़ों में है तो बच्चों में क्यों ना होगी। ये कहती हैं कि बच्चे यानी इस चीज़ पे मजाक उड़ाते हैं कि आपको कुछ आता नहीं और आप बहुत स्लो हैं और आप बहुत यानी टाइम लेती हैं तो हम आपको नहीं सिखा सकते, अगर आप ये सारी चीज़ों पर गौर करें तो मुझे एक लफ्ज़ समझ में आता है, इम्पेशेंस होना, सब्र नहीं रहा। आज के दौर का मसला क्या है कि सब्र की कमी है, इस्तकामत नहीं, इस्तकरार नहीं, आज के दौर का ये भी मसला है कि बच्चे यही सोच लेते हैं कि ये माँ ऐसी हैं। यकीन करें मैं अपनी एक एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ कि इस तरीके से कोई बात हुई, ऐसे ही बात मतलब जैसे बच्चियों के साथ मैं करती हूँ ना कि एक्सपीरियंस, आप सच बात बताएं अपनी मम्मी के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ इस तरह का डिस्कशन था, पूरी बात इस वक्त ज़रूरत नहीं करने की, तो एक बच्ची थी तो कहेंगी माई वो ओ शी इज़ वेरी स्टूपिड, उसका नीयत कोई बुरी नहीं थी लेकिन उसका एक्सेंट ऐसा लगा एकदम शी इज़ वेरी स्टूपिड, तो मैं हैरान हो गई कि ये माँ के लिए बोल रही है या यानी आप देखिए कि कैसे, तो मैंने कहा कि वाई यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो कहेंगी फिर उसने एक रोड का नाम लिया यहाँ हमारे यानी रोड एरिया में, तो उसका नाम कहेंगी दिस रोड इज दिस बैलियर बट माई मॉम से ब्लेयर, कुछ इस तरह का वहाँ का मजाक करके बताया कि बिकॉज उसको रोड का नाम नहीं लेना आता। तो ये शॉकनिंग बातें होती हैं, ये बहुत तकलीफ दे बातें हैं जिसको हमें देखना है, मसला असल में माँ बाप का है बच्चों का नहीं है, तो लिहाजा हम सबको अपनी ज़िंदगी में यही सबक लेना है कि बच्चों को ये वाक्या सुनाएं। आप इस टॉपिक के बारे में यानी अपने लिए काम की बात लिखें, अपना होमवर्क कि आपने ये वाक्या अपने बच्चों से शेयर करना है, इस रंग में नहीं करना कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम तो सुनते नहीं तुम ऐसे हो, देखिए जिस हिकमत से वो हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आपस में एक बड़े को सिखाया, आपने भी यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके अपने बच्चों को ऐसी बातें शेयर करनी है कि जिनसे खुद ब खुद अमल आए। जब हम टीज करते हैं ना, देखो वो ऐसे थे तुम ऐसे नहीं, यकीन करो वो सुन के भी कान बंद कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बेमिसल जहानत। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ 7 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया तालीम व तरबियत पाई, फिर इसके बाद वो आप से यानी नबी और इस कलील अरसे में नबी सल्लम से वो कुछ हासिल कर लिया जो कई बड़े बड़े लोग भी हासिल ना कर सके। आप तबन बहुत ज़हीन और फहीम फहम वाला वाक़े हुए थे। आपकी जहानत का अंदाज़ा इससे लग सकता है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राह मोहब्बत आपसे पूछा, बेटा ये तो बताओ कि मर्तबा हमारा बड़ा है या तुम्हारा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर तामुल फरमाया यानी सोचा रुके, और नबी सल्लम के दोबारा कहने पर अर्ज़ किया, अगर बेअदबी ना हो तो मैं कहूँगा कि मर्तबा तो हमारा ही बड़ा है। आप सल्लम ने पूछा किस तरह। अर्ज किया, नाना जान ख्याल फरमाइए, जैसे कि हमारे बाप अली रजी अल्लाह तआला अन्हो हैं, जिनके बारे में आप ही ने फरमाया अंत मिन्नी बिमंजिलती हारून मिन मूसा, कि आप तो, इसका तर्जमा यह है कि आपको मुझसे वही निस्बत है जो हारून अलैहि सलाम को मूसा अलैहि सलाम से थी। और ये नबी सल्लम ने एक मौके में इनके बारे में कहा था, क्योंकि ये आपके चचेरे भाई थे और हारून अलैहि सलाम आपके सगे भाई थे मूसा के। और फिर आपने ये फरमाया कि युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुल्लाहू व रसूलहू, इसका मतलब क्या है कि वो अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं। ऐसे आप सल्लम के बाप कहाँ थे, और जैसी हमारी माँ फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हैं, जिनकी शान में आपने फरमाया है सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, कि ये जन्नत की औरतों की सरदार हैं। फिर आपने फरमाया फातिमा तु बुद अतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, बुदा जैसे बाज कुछ हिस्सा टुकड़ा, ऐसी आपसे सल्लम की वालदा कहाँ हैं। और जैसे हमारे नाना पैगंबर आहिर उज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ऐसे आपके नाने नाना कहाँ थे। एक छोटे से बच्चे से के मुंह से ये दलाइल सुनकर हाजरीन हैरान रह गए और नबी सल्लम भी मुस्कुरा कर खामोश हो गए। आपने इस बात में एक चीज़ नोट की कि उस बच्चे को नबी सल्लम की एक दो तीन चार हदीसें याद थीं, और दो माँ के बारे में दो बाप के बारे में। ज़रा गौर किया करें इन चीज़ों पे। अल्लाह अकबर। हज़रत हसन की बेनज़ीर फतानत, फतानत किसको कहते हैं, फताना जैसे होता है ना फाता नून से, यानी बहुत ही ज़्यादा फतीन का लफ्ज़ है ना, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट जैसे होता है। हज़रत हसन की जहानत और फतानत का भी एक वाक़या कुतुबे तारीख में मिलता है, जिससे मालूम होता है कि हज़रत हसन रदी अल्लाहु अन्हो कानून दानी में आला दर्जे का दिमाग रखते थे, यानी लॉ में। और ये सब इब्तदाई तालीमो तरबियत और फैज़ानो सुहबत नबवी का नतीजा था। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक दफ़ा एक शख्स गिरफ्तार होकर अली मुर्तज़ा के दरबार में, जबकि वो हाकिम मदीना थे, पेश हुआ। गिरफ्तारी एक वीरान गैर आबाद मकान से हुई थी। गिरफ्तारी के वक्त इसके हाथ में एक खून आलूद छुरी थी, वो और वो खड़ा था और लाश खाको खून में तड़प रही थी। इस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सामने इकबाले जुर्म किया, यानी कन मान गया कि मैंने ये किया है, और उन्होंने कसास का हुक्म दे दिया। इतने में एक और शख्स दौड़ा दौड़ा आया, उसने खलीफा के सामने इकबाले जुर्म किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दरियाफ्त किया। यानी बात समझ में आ रही होगी आपको कि एक ऐसा मुकदमा है कि जिसमें एक शख्स पहले इकरार कर चुका है कि मैंने इस शख्स को कत्ल किया है, और सारे यानी असबाब भी दिख रहे हैं कि वाकई इसने किया होगा, लेकिन इतने में एक दूसरा शख्स भी आता है और वो भी यही कहता है कि मैंने इसको कत्ल किया। तो जाहिर बात है ये मामला ऐसा हो गया ना कि जिसमें डाउट हो सकता है। तब हज़रत अली उससे सवाल करते हैं, तूने क्यों इकबाले जुर्म किया था? इसने कहा, जिन हालात में मेरी गिरफ्तारी की गई थी, मैंने समझा कि इन हालात की मौजूदगी में मेरा इनकार कुछ भी मुफीद ना होगा। यानी पहला शख्स कातिल नहीं था, लेकिन उसने कह दिया हाँ मैंने किए। क्यों? कहते कि सारे ही जो एविडेंसेस थे, जो शहादतें थी, वो मेरे खिलाफ लग रही थी, तो अगर मैं ना भी मानता तो मुझे था कि आप इस बात को मेरे खिलाफ ही लेंगे। आपने पूछा कि वाक्या क्या है? उसने कहा, मैं कसाब हूँ, मैंने जाए वकुआ के करीब ही बकरा ज़िबा किया था। गोश्त काट रहा था कि मुझे पेशाब का जोर पड़ा। मैं जाए वकुआ के करीब ही पेशाब से फारिग हुआ कि मेरी नज़र इस लाश पर पड़ गई। मैं इसे देखने के लिए इसके करीब पहुंचा, अभी देख ही रहा था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सब लोग कहने लगे कि यही इसका कातिल है। मुझे भी यकीन हो गया कि इन लोगों के बयानात के सामने मेरे बयान का कुछ एतबार न किया जाएगा, इसलिए मैंने इकबाले जुर्म कर लेना ही बेहतर समझा। अब दूसरे इकबाली, इकबाली में जिसने कबूल कर लिया, यानी जिसने माना कि मैंने किया, जब दूसरे मुजरिम से माजरा दरियाफ्त की फरमाया, तो इसने कहा, मैं एक आराबी हूँ, मुफलिस हूँ, मकतूल को मैंने माल के लालच में कत्ल किया था। इतने में मुझे किसी के आने की आहट मालूम हुई, मैं एक गोशे में यानी एक कोने में जा छुपा। इतनी देर में पुलिस आ गई, इसने पहले मुलजिम को पकड़ लिया। अब जब फैसला सुनाया गया तो मेरे जमीर ने मुझे अंदर से झंझोड़ा और मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं खुद अपने जुर्म का एतराफ़ कर लूँ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो हज़रत हसन से जो पास ही बैठे थे, पूछा, कहो इसमें तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये कोई ऐसा अहम वाक़या नज़र नहीं आता, इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्यों? हज़रत हसन ने जवाब में फरमाया, पहले मुजलिम को तो इसलिए कि वो बेगुनाह है, और दूसरे को इसलिए कि अगर इसने एक को हलाक किया है तो एक शख्स की जान भी तो बचाई है। और कुरान मजीद में है, वमन अहया फकअन्नमा अहयन्नास जमीया, सूरह मायदा की आयत नंबर 32 है ये, आयत नंबर 32, जिसने एक जान को बचाया इसने गोया तमाम जानों को बचाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इस दलील की दाद दी, आपके मशवरे को कबूल फरमाया और दूसरे मुलजिम को भी छोड़कर मकतूल का खून बैतुल माल से अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। है आज के दौर में ऐसी मिसालें, जरा सोचिए हमारे इस उम्र के बच्चों की इंटेलिजेंसी। जी आप कुछ शेयर करें। आज के दौर में भी ऐसी माएँ हैं कि जो ऐसी तरबियत करती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप देखिए कि ज़िंदगी में अगर रुख सीधा रहा हो तो माजी या हाल या मुस्तकबिल से फ़र्क नहीं पड़ता, सोच सीधी रखी जाए ना। मामला कहाँ बिगड़ता है जहाँ माओं की सोच बिगड़ गई, ट्रेंड्स चेंज हो गए, तो फिर इस तरह के काम जो हैं वो फिर आमतौर पर होने लगे। कोई और? जी तो आगे देखते हैं एक और वाक्य, औलाद पर नबी सल्लम का रंग। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बचपन ही में अफ़्वो करम की जो तालीम दरबारे नबवी से हासिल की थी, ये इसका नतीजा था कि आपने अपने कातिल को माफ़ कर दिया। जब आप करीबुल मर्ग हुए तो फरमाया, मुझे कई बार जहर पिलाया गया मगर इस दफ़ा तो ऐसा सख्त है कि इसने मेरा कलेजा काट डाला। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूछा, भाई जहर किसने दिया? इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, पूछने से आपका क्या मतलब है, क्या इसे कत्ल करोगे? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हाँ। इमाम हसन फरमाने लगे, अगर जहर देने वाला वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ तब तो अल्लाह ताला खुद ही इससे इंतकाम ले लेगा, और अगर वो नहीं तो मैं पसंद नहीं करता कि किसी बेगुनाह को मेरी वजह से तकलीफ़ पहुँचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व करम का यही अक्स हज़रत हुसैन के अख़लाक़ पर भी पड़ चुका था, क्योंकि बचपन में उन्होंने जो तालीम पाई अपने नाना से पाई थी वो आखिरी उम्र तक उसका नक्श जो था वो उनके ऊपर रहा। यानी ये जो लफ्ज़ इन्होंने लिखा है कि लनक्शु फिल हजर, कि जैसे पत्थर में एक दफ़ा निशान पड़ जाए, ये अरबी में कब कहते हैं, जब ना मिटने वाला निशान जो है वो हो, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत किस्म का, यानी अक्स के जो जाए ना, तो कि आप देखिए कि बचपन में अगर किसी इंसान को, किसी बच्चे को किसी बुजुर्ग की सोहबत मिल जाए जिसके आला अखलाक हो, आला किरदार हो, तो फिर ऐसे बातें जो हैं वो बच्चों में भी असर रखती हैं। जब हमारी जिंदगियों में अफ़्वो दरगुज़र नहीं, एक दूसरे को माफ़ करना नहीं, तो फिर दूसरों के साथ भी नहीं आता। एक और बड़ा ही खूबसूरत वाक्या है अगले अगले सफ़े में, नबवी तालीम का औलाद पर ता आखिर असर, यानी नबी सल्लम की तालीम का जो असर आपकी औलाद पर रहा वो क्या था। एक दिन सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हों ने चंद अहबाब को दावत दी, दस्तरखान बिछा और खाना चुना गया। एक गुलाम गरम आश से भरा हुआ प्याला लाया, रोबे मजलिस से इसके पांव लड़खड़ा गए जिससे वो अपना तवाज़न कायम न रख सका, और प्याला इसके हाथ से छूटकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर गिरा और टूट गया। आपने बनज़रे तादीब, तादीब कहते हैं अदब सिखाने वाली बात, यानी गुस्सा जैसे आता है या घूरना जिसको अपने लफ्ज़ों में कहते हैं, और ये जो आश है ये मेरा ख्याल है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, शायद ये कोयलों की ऐश हो सकती है, वल्लाहु आलम, इसको हम चेक कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना तो आपने उसको देखा तो खादम खैबत से खायफ होकर कांपने लगा, लेकिन उसे कुछ याद आ गया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ रहम तलब निगाह से देखने लगा। और इसकी जुबान पर था वल काजिमीन अल गईस, गुस्से को पी जाने वाले। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन इरशाद फरमाया कि मैंने अपना गुस्सा दूर किया, फर्व किया मीन दूर कर दिया। फिर वो बोला वलाफीना अनिन्नास, के लोगों को माफ़ करने वाले। आपने फरमाया जा मैंने तेरा कसूर भी माफ़ किया। तो खादिम ने आयत शरीफा को ये कहकर पूरा कर दिया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। इसको सुनते ही आपने फरमाया जा मैंने तुझे आज़ाद किया और तमाम उम्र तेरी किफालत भी अपने जिम्मा ले ली। अल्लाहु अकबर, ये था खुल्क आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जो नबी सल्लम की अमली तालीम से इनमें पैदा हो गया था और हमेशा कायम रहा। कि आज भी कोई बाप है जो अपनी अमली तालीम से औलाद के अखलाक और आमाल की इसलाह कर सके। अब देखिए कि इतना फहम किसको आता है। आप ये समझते हैं कि अरब थे इसलिए अरबी बहुत अच्छी बोलते थे और उनको आयतें आती थी, ऐसा नहीं। मैंने आज भी ऐसे अरब देखे हैं कि उनको कुरान का एक लफ्ज़ नहीं आता, समझ नहीं आता, मैं जानते नहीं, पूरी आयत नहीं पता, आयत हो तो ये नहीं पता ये कहाँ से है। ये बचपन से ही ऐसी आयतें किसको याद हो सकती हैं कि जिनको गहरा शगफ होता है, जिनके अंदर वाकई इस चीज़ का पूरा शऊर हो चुका हो कि वो कैसे इन चीज़ों को देखेंगे। अगला टॉपिक है सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला पर नबी सल्लम का असर। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला को जो बचपन से ही शर्म व हया की तालीम दी गई थी, ये उसी का असर था कि वो नामहरमों को देखने से भी शर्माती थी। एक बार हज़रत फ़ातिमा के घर नबी सल्लम तशरीफ़ लाए, पीछे पीछे एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम भी थे, वो अंदर आ गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने इनको देखा तो दौड़कर कोठरी में चली गईं। जब वो काम से फारिग होकर चले गए तो नबी सल्लम ने फरमाया बेटी उम्मे मक्तूम तो नाबीना थे, फिर क्यों भागी? तो आपने अर्ज़ किया अब्बा जान वो अंधे थे लेकिन मैं तो अंधी ना थी कि गैर महरम को देखती। किसको सुनानी चाहिए ये बात? आज देखिए कि हम किस दौर में जी रहे हैं, आँखों को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कानों को कहाँ, ज़ुबानों को कहाँ, जहाँ इखलाक एक तकल्लुफ़ बन गया, जहाँ सिर्फ एक बाजारी किस्म का इखलाक है कि हर आते जाते को देख स्माइल करो, मुस्कुराओ, शेक हैंड करो, अपने घर में आओ तो तेवरियाँ चढ़ा लो, गुस्सा कर लो, माँ बाप को देखो तो घूर के देखो, उनसे बात करो तो घन गरज की तरह बात करो जैसे बादल गरजते हैं, और बाहर वाले लोगों के साथ कैसा मामला रखो। लेकिन वो बे औरत जो एक नाबीना से पर्दा करे तो फिर ज़रा सोचिए कि उसके बच्चों के साथ क्या मामला होगा। यानी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वो दौर आज के दौर से ज़्यादा महज़्ज़ब दौर था, और वो फितने जो आज दिखते हैं वो उस दौर में नज़र नहीं आते थे। एक और टॉपिक सही तालीम और तरबियत के दूरस असरात। नबी सल्लम की तालीम सिर्फ दीन और मज़हब तक ही महदूद न रहती थी, बल्कि आप अपनी औलाद को मियाँ बीवी के हकूक, खानगी उमूर और इस्लाह मुआशरत के मुतल्लिक भी हर तरह के सबक देते रहते ताकि इनकी घरेलू ज़िंदगी भी शीरी समरात पैदा कर सके। जुमला मुश्किल तो नहीं, बात समझ आ गई? यानी कि किस तरीके से नबी सल्लम अपने घर वालों के हकूक़ अदा करते, घरेलू मामलात को, और उनको इस तरह करते कि उनकी आम जिंदगी भी खूबसूरत रहे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह कबल अस नबूवत अबू अल आस से हुआ, ये नबी सल्लम की बेटी थी, पीछे हम पढ़ चुके। मगर आप सल्लम ने सैयदा ज़ैनब और अबुल आस को बाहमी मोहब्बत के वो सबक दिए थे जो फरीकैन आखिर उम्र तक भी न भूले, हालांकि मुद्दत तक इनमें मजहबी तफरीक भी रही। कैसे? ये हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम में दाखिल हो गई मगर अबुल आस मुस्लिम न हुए थे। मुखालिफीन ने हरचंद इसे तलाक पर मजबूर किया मगर इसके जो ताल्लुकात बीवी से इस्तवार हो चुके थे वो ना टूटे, और ना ही हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ से इनमें कोई खलल आया। आखिर ये तालीम नबवी ही का असर था। आपको शायद इनके बारे में मालूम होगा ना कि ये फिर हिजरत करके नबी सल्लम के पास आ गई थी मदीना में, यानी वैसे जुदा हो चुकी थी और वो मक्का में थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ग़ज़वा बदर के कैदियों में ही आए थे, ये कैदी बन के आए, तो इनको जब कैदी मतलब बन के आए तो फिर इनको छुड़ाने के लिए इनकी बेटी ने वो कंगन नबी सल्लम को भेजे जैसे एक फ़िदिये के तौर पे, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के थे। तो वो देख के नबी सल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फिर सहाबा से पूछा, जैसे इजाज़त तलब की कि क्या मैं ये कंगन कबूल करूँ या ना, तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम इनको ऐसे ही आज़ाद कर दें। फिर इस सलूक का इतना अच्छा असर हुआ कि ये वापस गए और वहाँ से फिर अपने काम निपटा के आए और मुसलमान हो गए। और ये हैं वो बेटी के जिनको फिर नबी सल्लम ने उसी पुराने निकाह पे अबुल आस के साथ भेज दिया था। यानी इसे बहुत सारे मसले अखज़ होते हैं जो इस वक्त यहाँ नहीं, क्योंकि ये फिक्की क्लास नहीं है, लेकिन बहरहाल आप देखिए कि आज हम एक छत के नीचे साथ नहीं रह सकते। हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जहनी फ़र्क बहुत है। हम जितना दीन पढ़ते जाते हैं ना, बाद हम शोहरों से उतने ही दूर होने लगते हैं, क्योंकि वो बेचारे नहीं पढ़ रहे, वो क्लासों में नहीं आ रहे, सुबह शाम नहीं सीख रहे, और हम उनका जीना धोबर करते हैं। नहीं, याद रखिए, अगर हिकमत हो, अक्लमंदी हो, अल्लाह से गहरा ताल्लुक हो, तो और शौहर के साथ अच्छी मोहब्बत हो, दिल के ताल्लुक हो, आपस में एक बंदा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, तो बहुत बड़े बड़े फ़र्क भी हैं वो हैं वो दूसरे बंदे को हिदायत पे ला सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ सीखी कि एकदम घर नहीं तोड़ने और एकदम शौहरों को मुश्किल में नहीं डालना और बीवियों को भी नहीं डालना, और फिर उसका अच्छा नतीजा ज़िंदगी में इंसान ज़रूर देखता है। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुकात जो खावन से थे, वो तो अरब में ज़रबुल मिसल ही बन गए। यानी ये दोनों हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवियाँ थी और लोग मिसालें दिया करते थे कि ये इतना अच्छा जोड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खावन को हुक्म देते हैं कि ज़ौजा यानी बीवी से अच्छा बर्ताव करे, जो खुद खाए इसे खिलाए, जो खुद पहने इसे पहनाए, और हर हाल में इसके हकूक की निगहदाश्त रखे। मगर इसके साथ ही औरत को हुक्म होता है कि वो अपने शोहर की फरमा बरदारी अपना फ़र्ज समझे और उसकी इताअत में फ़र्क ना आने दे, सरे मुंह यानी बाल के बराबर भी फ़र्क ना आने दे, ताकि दोनों के ताल्लुकात खुशगवार रहें। लेकिन फिर भी जन्नो शोहर यानी बीवी और शोहर के ताल्लुकात मुआशरत ऐसे अहम और नाजुक होते हैं कि कभी ना कभी रंजो मलाल का इजहार हो ही जाता है। नबी सल्लम की शादीशुदा औलाद को तालीम, ये टॉपिक आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या होता है, शादी के बाद नहीं टोकना, क्योंकि अब तो अपने घर चली गई, अब तो कह दिया, अब क्यों रोकें। तो अब देखेंगे कि नबी सल्लम शादी के बाद भी अपने बच्चों की फिक्र रखते थे और उनके दीन अदब का ख्याल रखते थे। हम तो शादी से पहले कुछ नहीं कह सकते, शादी के बाद कहाँ कहेंगे। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से ऐसा बर्ताव हुआ जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नागवार गुजरा। आप नाराज़ होकर अपने मैके यानी वालदैन के घर आ गईं। नबी सल्लम ने पूछा, बेटी क्यों कर आईं? हज़रत फातिमा ने सब कुछ कह सुनाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे ये कहा, इसलिए मैं नाराज़ होकर आ गई। नबी सल्लम ने फरमाया, बेटी मुनासिब यही है कि तुम फौरन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वापस चली जाओ और इनसे माजरत चाहो। वल्ला, अगर आज तुम मर जाओ और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम पर नाराज़ हो, तो मैं तुम्हारा जनाजा न पढ़ाऊँगा। इसके बाद आपने नरमी से समझाया, वो कौन से मर्द और औरत हैं जिनके दरमियान कोई रंजिश वाक़ ना होती हो? ये क्या ज़रूरी है कि मर्द का तमाम काम औरत की मंशा यानी उसकी मर्जी, शाह जैसे हम कहते हैं ना, इंशा अल्लाह, तो जो लफ्ज़ शाह है वही मंशा में है, मर्जी चाहत के मुताबिक ही करे और अपनी बीवी से कुछ ना कहे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठी और अपने घर चली गई। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका इल्म हुआ, तो इन पर नबी सल्लम के इस मुसालेहाना जवाब का इस कदर असर पड़ा कि उन्होंने कसम खा ली, अब कभी भी ऐसा तर्ज अमल इख्तियार न करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे और तुम्हारी दिल शिकनी हो। चुनाचे ऐसा ही हुआ। नबी सल्लम की इस तालीम से दोनों पर ऐसा असर हुआ कि फिर इनमें कभी रंजीदगी पैदा न हुई। आज देखिए कि दामाद हमारे लिए कैसे यानी एक कहना चाहिए कि हथेली के चाले बन गए, कि उनको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन और दूसरी तरफ देखिए कि ज़रा बेटी कोई बात करती है मैके की, तो माँ बाप हमेशा उसका साइड लेते हैं। अच्छा, हम देखेंगे, पहला एक और दौर था कि बेटी को ही बुरा कहते थे लोग और उसको गलत कह के कहला सुना के पहुँचा देते थे वापस। आज के दौर में ऐसा नहीं है, और वही बात है कि तरबियत के जो रुख हैं उसमें तो सब्र नहीं, बर्दाश्त नहीं, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। छोटी बच्ची की मर्ज़ी हम पूरी करते रहते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते, तो फिर एकदम जब शादी हो और शौहर में कोई कमी दिखे, घर वालों में कोई कमी दिखे, तो फिर कैसे वो बच्चियां निभा करें। तो ये नबी सल्लम ने एक अच्छा सबक हमें दिया। इससे हमें क्या सबक मिला कि कभी भी एकदम बच्चियों के मामले में कूद नहीं पड़ना चाहिए और उन्हीं को अच्छे तरीके से सुझाया जाए। और जब अच्छी पीछे से इन्फोर्समेंट होती है, अच्छे तरीके से उनकी तरबियत की जाती है, तो फिर हालात जल्दी ठीक होते हैं बजाय इसके के अकड़ा जाए। फिर इसके बाद क्या वो मुसलमान जो अपनी बेटियों के पुश्ते पनाह बनकर, पुश्ते पनाह कहता है जो पुश्त के पीछे से पनाह दे, जिसको हम कहते हैं पीछे से हाथ देना और इस तरह मदद करने के मानों में, उनकी उम्रें तबाह कर रहे हैं। नबी सल्लम जैसे माहिर नफ्सियात के इस तजुर्बे से सबक लेंगे। काश हम ताल्लुकात शोहर और बीवी और फलसफे निकाह पर गौर करते और हमारे घर भी आज फातिमा और अली रजी अल्लाह तआला की तरह आबाद होते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला जो नबी सल्लम को सारे कुंबे से ज्यादा प्यारी थी, उनकी कैफियत ये थी कि उन्होंने मेरे घर आकर इतनी चक्की पीसी कि हाथों में निशान पड़ गए। पानी के लिए मशक उठाई कि गर्दन पर निशान पड़ गया। घर में झाड़ू दी कि सब कपड़े मैले हो गए। एक दफ़ा नबी सल्लम के पास कुछ खुदाम, खुदाम खादिम की जमा, सर्वेंट्स, गुलाम आए। मैंने फातिमा रजी अल्लाह तआला से कहा कि आप अपने अब्बा जान के पास जाएं और एक खादिमा मांग लें। चुनांचे फातिमा गईं मगर शर्म के मारे कुछ न कह सकीं। अगले रोज़ नबी सल्लम खुद तशरीफ़ लाए और दरियाफ़ फरमाया क्या ज़रूरत थी। फातिमा रजी अल्लाह तआला चुप हो गईं। मैंने कहा कि नबी सल्लम मैं आपको बतलाता हूँ, चक्की पीसते पीसते इनके हाथों पर आबले पड़ गए और मश्क उठाते उठाते गर्दन पर निशान पड़ चुके हैं। मैंने देखा था कि नबी सल्लम के पास कुछ खादिम आए हैं। मैंने ही इनसे कहा कि नबी सल्लम के पास जाएं और खादिम मांगें कि इस तकलीफ़ से रहाई हो। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया इत्तकिल्लाह या फातिमा व अद्दी फरीदता रब्बिकी व अमली अमल अहली की व इज़ा अखस्ती मज्जा की फसब्बिही सलासम व सलासीना वहमदी सलासम व सलासीना व कब्बिरी अरबाउम व सलासीना फजालिक मियतुन हिया खैरुल्लकी मिन खादिम। ए फातिमा रजी अल्लाह तआला तकवा इख्तियार करो, फ़राइज़ इलाही अदा करो, अपने कुंबे के आमाल को अपना दस्तूर बनाओ और जब बिस्तरे ख्वाब पर लेटो तो 33 यानी 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 यानी 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये अमल तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। ज़रा गौर कीजिए इस हदीस मुबारका से हमें कितने सबक हासिल होते हैं और इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के कितने ही पहलू हम पर मुनकशिफ यानी खुलते हैं, मुनकशिफ होते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के कुंबे की मईशत, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का ज़ुहद और रियाज़त, घर की खिदमत, इरशाद नबवी के सामने सर तस्लीम ख़म करना, इस कदर तकालीफ के बावजूद तहमीद यानी हम्द अल्हम्दुलिल्लाह कहना और तस्बीह यानी सुभान अल्लाह कहना, इसमें मसरूफ़ रहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने लिए और अपनी प्यारी बेटी के लिए दुनिया और अमवाले दुनिया से बेजार होना, इस कदर अहम बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं, जिस पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं। आज हम ज़रा अपनी लाडलियों की ज़िंदगियों को भी देखें। अब देखिए कि काम कर कर के थक गई तो फिर खादिमा मांगने गई, और लाडली थी, अल्लाह के नबी सल्लम के घर में काम नहीं किया, लेकिन शोहर गरीब थे। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कोई बहुत आला स्टेटस के इंसान नहीं थे, बहुत कम था। बल्कि कभी मौके पे सुनाऊंगी कि इन्होंने अपनी शादी के लिए भी एक ऊँट बेचारों ने जमा करके रखा था और वो भी फिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने किसी के शह दिलाने पर उसको ज़बह कर दिया। तो यानी आप देखिए कि इन सारी बातों से हमें ये समझ में आता है ना कि वो कुंबा एक वाकई हकीकी कुंबा था और उनके मसाइल आज हमारे वाले मसाइल थे। और यकीन करें कि ये जो बात इन्होंने बताई है, ये रात को पढ़ने अली नबी सल्लम ने इनको बताई, आप भी आज के दौर में इसको आजमा सकते हैं। मैंने कई बार इसको आजमाया, जब बहुत थकन हो, बाज़ दफ़ा होता है कि इंसान थक जाता है और नींद ही नहीं आती, फिर कभी टांगों में दर्द है, कभी कुछ, आप ये पढ़ें इतना सुकून मिलता है। कि वाकई आप उसको करते हैं। और कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने ये किया और उन्होंने कहा कि मेरा ये मामला जो है वो हल हो गया। तो ये थे चंद खूबसूरत से वाकयात कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद की तरबियत करते थे। मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छी किताब साबित हुई हम सबके लिए कि जिसमें हम देखें, और मैं ये महसूस करती हूँ कि ये किताब और इस तरह की बातें आप उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो लोग दीन से डरते हैं, जो अभी अहकामात नहीं कबूल करने के हक में, या अभी इतने उनके स्टमक स्ट्रांग नहीं कि वो मुश्किल बातें समझें। तो ये लाइट सी चीज़ें, इनको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, बच्चों के साथ, घर में, और नबी सल्लम का ये रूप आम करने की ज़रूरत है। जिनको ये किरदार नज़र आ जाएगा फिर वो कैसे गलत काम करेंगे और इस चीज़ से बचेंगे। यानी इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लम को इस तरीके से पोर्ट्रेट कर सकें कि जब हम इस किताब को पूरा करें तो हमें हर मामले में बेहतरीन किस्म की मुकम्मल रहनुमाई जो है वो नज़र आए। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे।